स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, गुरवे गौरचंद्राय, राधिका तदाल्ये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय, तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा से श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर इस्कान उज्जैन की ओर से वार्षिक भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव में यहाँ शास्त्री नगर उद्यान में यहाँ के लोगों के सहयोग के साथ यहाँ की जनता के उत्साह को देखते हुए दूसरे साल भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रवाहित इस भगवत अमृत गीता अमृत का 7 दिवसीय सुबह और शाम सत्संग का आयोजन किया गया और आज 6ठे दिन इस सत्संग में आपका प्रातःकालीन वेला में स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी के 9वां अध्याय जिसको गुह्यतम ज्ञान कहा जाता है और गुह्यतम है भगवान से प्रेम और प्रेम करने का साधन है भक्ति और भक्ति भी शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति केवला भक्ति। तो इस भक्ति की महिमा का वर्णन इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के मुख से सुना और तीसरे श्लोक का भी रात चर्चा हुई थी और इन मेहमान ने 3 बातें हमको साथ रखनी है। पहले तो भगवान से सुनना है, भगवान के मुख की वाणी भगवत गीता को सुनना है और भगवान के प्यारे भक्तों से सुनना है और दूसरा भगवान के गुण में दोष नहीं देखना है, ईर्ष्या नहीं करना है, भगवान की भगवत्ता और महिमा का गुणगान करना है, जलना नहीं है अनुसूयवे, और तीसरा श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए भगवान के वचनों के ऊपर भगवान की वाणी के ऊपर और भगवान के भक्तों के संग के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो भक्ति के लिए ये मुख्य अंग इस तीन श्लोकों में मिलते हैं। पहले तो भक्ति का मुख्य अंग श्रवण, और दूसरा पंचअंग भक्ति में जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसमें मुख्य अंग हरे कृष्णा। तो छठे दिन के सत्संग में नवे अध्याय का पहले तीन श्लोकों का जो रात चर्चा हुई है उनको एक बार फिर श्रवण कर रहे थे। तो नवदा भक्ति से श्रवण और पंचअंग भक्ति से साधु संग, क्योंकि श्रवण कहां से करेंगे, साधु संग होगा तब करेंगे ना, भक्तों के संग में श्रवण करेंगे। और तीसरा और सबसे मुख्य है हृदय से ईर्ष्या रहित हृदय। ईर्ष्या को हृदय से जड़ से निकालना पड़ेगा, तभी भगवान उस हृदय में भगवान प्रवेश करेंगे। जो हृदय ईर्ष्या शून्य होगा, शुद्ध हृदय का अर्थ है जिसमें ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, भगवान की प्रति ईर्ष्या नहीं है, किसी की प्रति ईर्ष्या नहीं है, सुहृद सर्वभूतानाम, सबके प्रति सद्भावना है। ध्रुव महाराज को मां सुनीति कहती है, बेटा वन में भगवान को पाने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी माता जो सुरुचि ने तुम्हें कठोर वचन कहे हैं, उनकी प्रति तुम्हारे हृदय में द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगा, तो भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, इसलिए पहले उसको निकाल दो, फिर भगवान की यही भक्ति करने के लिए जाओ। तो ये द्वेष हृदय से निकालना है। अब चार श्लोक से लेके दस श्लोक तक भगवान का अचिंत्य संबंध इस जगत से, संसार से, जीवों से कैसे है, जो बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन भगवान कृपा करके करुणा करके चार श्लोक से लेके दस श्लोक तक भगवान का अचिंत्य संबंध इस प्रकृति के साथ, जगत के साथ और जीवों के साथ। तो प्रकृति क्या है, भगवान की शक्ति, जीव क्या है, भगवान की शक्ति। तो भगवान का अपनी शक्ति के साथ कैसा संबंध है, और ये अचिंत्य है, ये चिंतन करने से समझ में नहीं आएगा, तभी भगवान अपने वचनों में, और ये कथन थोड़ा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। तो आइए चौथे श्लोक का पाठ करके आगे बढ़ते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मया, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते मेरे द्वारा, इदम सर्वम ये सब जगत, ततम का मतलब जो तुम्हें दिख रहा है सामने, ये जगत जो दिख रहा है सारे, इसमें मैंने प्रवेश किया हुआ है। कैसे प्रवेश किया है भगवान ने आपने इस जगत में, अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त का अर्थ होता है जिसके कोई व्यक्तित्व नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, और इसको कहा जाए, अव्यक्त का अर्थ वैसे होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। और भगवान में बहुत बड़ी चतुराई करके अव्यक्त के पीछे मूर्ति ना डाल दिया, अव्यक्त मूर्ति ना, ये दो एक दूसरे के विपरीत शब्द है। मैं पूरे जगत में प्रविष्ट हूं, पूरे जगत के अंदर मैंने प्रवेश किया है अव्यक्त मूर्ति से। भगवान ये क्या अव्यक्त मूर्ति है, मेरी मूर्ति है, भगवान ये कहते हैं, लेकिन इस जगत में लोगों को दिखती नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान इसमें अव्यक्त है। मेरी मूर्ति है लेकिन लोगों को नहीं दिखती है। इसका अर्थ ये है कि मैंने जगत में प्रवेश किया है मेरी शक्ति के रूप में, और मेरी शक्ति को रूप नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं शक्ति का स्वामी शक्तिवान हूं तो मेरी मूर्ति है, तो मैं व्यक्ति स्वयं परम भगवान अपनी अव्यक्त शक्ति से इस पूरे जगत में समाया हुआ हूं। जैसे उदाहरण ऐसे दिया जाए, अगर सूर्य देव कहे कि मैं सारे जगत में समाया हुआ हूं मेरे अव्यक्त तेज से, तो यह सत्य है भाई, सर्वत्र भगवान, सूर्य का प्रकाश तो सब जगह है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में कोई सूर्य की मूर्ति तो नहीं है ना, लेकिन जिससे प्रकाश आ रहा है वो तो सूर्य नारायण है ना, सूर्य देव है ना, तो सूर्य देव कहेगा मेरा मेरी रोशनी पूरे संसार में फैली हुई है मेरे अव्यक्त रूप में, तो प्रकाश है अव्यक्त और सूर्य है मूर्तिमान। भाई सूर्य तो मूर्तिमान है ना, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो उसकी मूर्ति नहीं है। तो मैं अपनी शक्तियों के द्वारा जगत में प्रविष्ट हूं। एक और भी भाव इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, जगत में सर्वत्र मैं प्रविष्ट हूं मेरी शक्तियों के द्वारा। एक शक्ति की मूर्ति है और एक शक्ति की मूर्ति नहीं है, ऐसे भी कह सकते हैं। अव्यक्त है भगवान की बाहरंग शक्ति, अव्यक्त है, लेकिन जीव आत्माएं हैं उनको तो मूर्ति है ना सबको, तो ये भी तो हम भी तो भगवान की शक्ति है ना भाई। इस जगत में दो ही चीजें हैं, ये सातवें अध्याय में हमने सुन लिया, एक तो जीव आत्माएं और एक अष्टधा भिन्न प्रकृति, अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो ये दो चीजों से तो जगत बना हुआ है ना, तो ये दोनों है क्या? ये दोनों भगवान की शक्ति है, उसमें से एक शक्ति जो है वो अव्यक्त है और एक शक्ति मूर्तिमान है। जैसे हमारे हम सब की शक्लें हैं, लेकिन आकाश वायु अग्नि इसकी शक्लें नहीं है, इनकी शक्लें नहीं है जब ये संसार में फैले हुए हैं, लेकिन इन सब का अपना स्वरूप भी है भाई। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर लेती है, पृथ्वी भगवान की, भूदेवी भगवान की, जैसे एक तरफ लक्ष्मी देवी है ऐसे दूसरी तरफ भूदेवी है, तो इनके रूप भी है और इनके बिना रूप पे इनकी शक्ति से भी प्रवेश है, सबका भी ऐसे कहा किया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने एक शब्द कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद। भेद ये है कि भगवान मूर्तिमान रूप से जगत में नहीं है, और अभेद क्या है? अभेद ये है कि भगवान अपनी शक्ति से इस जगत में है, तो शक्ति और शक्तिमान में तो कोई अंतर नहीं है, इसके लिए भगवान जगत में है भी और नहीं है। व्यक्तिगत रूप से नहीं है लेकिन शक्ति के रूप से है, लेकिन शक्ति शक्तिमान की, इसलिए दोनों है, तो मूर्ति ना। प्रभुपाद जी ने तो इसका एक और भाव दिया प्रवचन में कि भगवान हमको नहीं दिखता है, लेकिन साधु संतों को भगवान की मूर्ति जगह जगह दिखती है। वो तो अपने हृदय में भगवान की मूर्ति को देख सकते हैं। प्रेमंजन श्रित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु व्योमयन्ति, ये श्लोक कहकर भगवान ने कहा कि दूसरे जगत को नहीं दिखती है लेकिन भगवान को दिखती है। जैसे हम उदाहरण आपको दें, एक एक्सरे फोटो निकालते हैं डॉक्टर, तो बच्चा देखे आप देखे तो उसके अंदर क्या दिखेगा? बस काला है और सफेद, बस और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाओ तो उसके अंदर 100 चीजें डॉक्टर देख सकता है, तो डॉक्टर की आंख में ज्ञान है, इसलिए उसके अंदर बहुत चीजें दिखती है, हमको तो पन्ना दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसे जो जानकार है उनको भगवान दिखता है, जो जानकार नहीं है उनको नहीं दिखता है। तो पहली लाइन में भगवान सर्वत्र है अपनी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से, और उनका अपना दिव्य रूप निरंतर अपने धाम में रहता है। और दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं मत स्थानी सर्वभूतानी, ये सारे प्राणी मेरे ऊपर आश्रित हैं। स्थानी मत स्थानी, स्थानी का मतलब जिसके ऊपर ये टिके हुए, ये सब मेरे ऊपर टिके हुए हैं। और दूसरी लाइन में कहते हैं न चाहम तेषु अवस्थित, लेकिन मैं इनमें टिका हुआ नहीं हूं, एक दूसरे के विपरीत है, ये सब मुझ में टिके हुए हैं लेकिन मैं इनमें टिका हुआ नहीं हूं। इसका असल में भाव यह है भाई, हम सब सूर्य के प्रकाश में जीव रहे हैं, ये तो सत्य है ना। हम बाहर जाएं तो कहते हैं सूर्य की रोशनी में घूम रहे हैं, लेकिन सूर्य तो नहीं है ना हमारे साथ, सूर्य तो अपने लोक में बैठा हुआ है। तो सूर्य के प्रकाश में सभी जी रहे हैं, लेकिन सूर्य लोक में तो हम में से कोई नहीं है, सूर्य के साथ तो कोई नहीं। ऐसे सारे ही मेरी शक्ति के ऊपर आश्रित हैं, आधारित हैं, स्थित हैं, लेकिन मैं शक्तिवान, इस शक्ति से अलग मेरा अपना अस्तित्व है। जैसे सूर्य का अपना अस्तित्व है और सूर्य के प्रकाश में सारा जगत टिका हुआ है। हम कहें कि हम एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी है, लेकिन सूर्य को तो नहीं देख रहे। एक भाव यह है कि सारा जगत जड़ प्रकृति तो फिर भी प्रकृति ही है, लेकिन उसके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान प्रवेश किया हुआ है। तो परमात्मा के रूप में भगवान इस जगत के कण कण में, अणु अणु में, परमाणु में और उनके बीच में भी विराजमान है परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक में भागवत के इस श्लोक का उदाहरण दिया है, एक ही अद्वैय तत्व है जिसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भगवान, जो कुछ भी ये दुनिया है, ये भगवान की ब्रह्म ज्योति के ऊपर टिका हुआ है, प्रकाश भगवान से निकलता है। जब सृष्टि करनी होती है तो जैसे आकाश में कहीं बादल आ जाता है एक कोने में, ऐसे महत तत्व आ जाता है और सृष्टि उसमें होती है। किसमें होती है? बोला ब्रह्म ज्योति में सृष्टि होती है। कहां होती है? जहां उसके ऊपर बादल की तरह कहीं महत तत्व आ जाता है, प्रकृति प्रकट होती है और भगवान फिर कण कण में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। भगवान के रूप में तो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, गोलोक अवस्थित, अपने धाम में रहते हुए भी अखिल जगत में भगवान परमात्मा के रूप में प्रविष्ट है। परमात्मा का अस्तित्व केवल भौतिक जगत में है, भगवान के धाम वैकुंठ में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि साक्षात भगवान वहां विराजमान है। तो ये श्लोक में हुआ कि मेरी शक्ति और मेरे परमात्मा रूप में ये सारे जगत में मैं हूं और सारा जगत मुझ में टिका हुआ है, फिर भी मैं जगत से अलग, मेरा अस्तित्व है और मैं भगवान के रूप में अपने धाम में नित्य निवास करता हूँ। अब आगे के श्लोक दूसरे में आइए, वो बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा। पर ये श्लोक न च मतस्थानी भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भ्रन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावनः। अभी बोला के सब मेरे में स्थित है और अभी कह रहे हैं नच्च मे स्थ नच्च मत स्थानी भूतानी, बिल्कुल विपरीत है उसके। चौथे श्लोक में कहा कि सभी भूत मुझ में स्थित हैं और अब कहते हैं कोई भी भूत मुझ में स्थित नहीं है। वहां भगवान परमात्मा के नाते कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सब भूत मेरे ऊपर आश्रित हैं, और यहां भगवान की भाषा बोल रहे हैं कि भगवान में स्थित नहीं है। ये भगवान की भाषा है, वो परमात्मा की भाषा है। जैसे जब भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, ये परमात्मा की भाषा है। और जब कहते हैं सौहृद सर्वभूतानाम, मैं सबका सबसे प्रेम करता हूं सबका हितेश हूं, ये भगवान का भाव है। तो भगवान जैसा स्तर के लोग सामने हैं वैसे बात करते हैं। भगवान के रूप में भगवान के ऊपर कोई टिका हुआ नहीं है, लेकिन भगवान के परमात्मा के भाव रूप में सारा जगत भगवान के ऊपर टिका हुआ है। बोला ये क्या है? बोला पश्चिम ऐश्वरम, ये तो मेरा दो शब्द है, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है। ये शब्द योग और ऐश्वर्य दसवें अध्याय में आएगा, वहां भगवान कहते हैं मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। देखो पानी है योग और बर्फ है उसका ऐश्वर्य। पानी से बर्फ बन जाए तो उसका ऐश्वर्य है, अरे चलने वाली देखो तो एक जगह पत्थर बन गया। तो योग जो होता है अपने आप में होता है और ऐश्वर्य दूसरे देखते हैं। तो भगवान कहता है ये मेरा योग है। अरे भगवान ये आपका कैसा योग है? हमको आपने कहा है कि हम योग करके आपसे जुड़े, ये आपका कौन सा योग है? बोला मेरा ये योग है भक्तों के ऊपर कृपा का। जैसे भक्त मुझे पाना चाहते हैं, ऐसे मैं भक्तों के ऊपर कृपा करके उनके ऊपर अनुग्रह करता हूं, ये मेरा योग है। एक शब्द और योग, ये योग और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब मेरी विभूति है, मेरा वैभव है। पश्चिम में योगम ऐश्वर्य, अर्जुन पूछेगा कि आपका योग और ऐश्वर्य क्या है बताओ भगवान। अर्जुन फिर दसवें अध्याय में यही प्रश्न पूछेगा। भगवान कहते हैं ये मेरा योग और ऐश्वर्य है, इसका मतलब ये अचिंत्य है, ये आपके चिंतन से समझ में नहीं आएगा। और फिर कहते हैं भूत भ्रण, मैं सबका भरण पोषण करता हूं, मैं सबका पालन पोषण भ्रण, भ्रण का मतलब भ्रण पोषण करता हूं। नच भूत इस, तो इसके अंदर बैठ के नहीं करता हूं, इन सबको मैं ही चला रहा हूं लेकिन इसके अंदर मैं नहीं हूं। ये कह रहे हैं भगवान है, सभी का पालन पोषण कर रहा है लेकिन सब में परमात्मा के रूप में है, भगवान के रूप में नहीं है। मम आत्मा भूत भावन, भवन का मतलब सृष्टि, इनका पालन भी मैं करता हूं, इनकी सृष्टि भी मेरे द्वारा होती है। मम आत्मा, भगवान ने ऐसा शब्द कह दिया जिसके ऊपर लोगों को भ्रमण हो जाएगा कि भगवान और भगवान की आत्मा में कोई अंतर है क्या। मैं कहूं मेरी आत्मा तो मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, तो क्या भगवान की आत्मा और शरीर अलग है क्या? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक न्याय होता है, उसको कहते हैं राहु के सर का न्याय। कहा जाए कि राहु का सर यहां है तो राहु का तो है ही सर, उसका तो और कुछ है ही नहीं। तो कभी कभी कहा ऐसे जाता है कि राहु का सर का मतलब पूरा राहु, तो भगवान की आत्मा का मतलब जो भगवान का स्वरूप पूरे का पूरा है वो चिन्मय सच्चिदानंद है, उसके अंदर कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो पूरे का पूरा ही चिन्मय है। तो भगवान कहते हैं मेरे भगवान के, मैं भगवान होते हुए सबका पालन पोषण करता हूं लेकिन सबके अंदर नहीं हूं। कैसे पालन पोषण करते हैं? सूर्य से प्रकाश दिला देता हूं, चंद्रमा से शीतलता देता हूं, रस भरता हूं पृथ्वी में और पृथ्वी से अनाज का उपजाया कर तब हो जाता है जिससे आपका जीवन का निर्वाह होता है। सारी प्रकृति के अंदर देवताओं के माध्यम से परमात्मा के रूप से भी मैं आपका पालन पोषण करता हूं, लेकिन भगवान के रूप से मैं इससे अलग अपने स्थान पे हूं, ये मेरा योग और ऐश्वर्य है। मैं एक जगह न होके भी सब कार्य कर सकता हूं मेरे संकल्प से। भगवान ने इस श्लोक के भाव में लिखा है, कभी ऐसे नहीं समझना कि भगवान को जब हमारे पालन पोषण करना है तो ये हमारे ऊपर भार है। जैसे आजकल माता पिता समझते हैं कि एक बच्चे से ज्यादा हो गया तो हमारे ऊपर भार हो गया, ये तो बड़ा पालन पोषण मुश्किल हो रहा है, पढ़ाई का खर्चा बढ़ गया और लड़की हो गई तो और परेशान होते हैं कि इसका दहेज देना पड़ेगा विश्वा, तो ये लोग परेशान होते हैं कि बच्चे नहीं पैदा कर रहे इसलिए। और भगवान इसे पूरे जगत का भार उठाने से थकता नहीं है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि हम देखते हैं कि वो एटलास एक है, वो पूरा धरती का गोला उठाता है तो बूढ़ा होके झुक गया है। ऐसे नहीं है कि भगवान इस धरती का भार उठाते हैं तो उसकी वजह से थक जाते हैं, ये भगवान के संकल्प में उठी हुई है। ये देखो तो सही, ये धरती है, इसके नीचे पाइप बोरिंग करते हैं तो पानी, इसके चारों ओर समुद्र है पानी का, लेकिन पानी में डूबती नहीं है, नीचे जा ही नहीं रही है, नीचे पानी पड़ा है, चारों ओर पानी पड़ा है, समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं आता है, ये 2 इंच बाहर आ जाए तो सभी डूब जाए, क्यों नहीं आता है? तो भगवान ने 15वें अध्याय में कहा दिया, गामाविश्यांच भूतामि धारयामि अहम ओजसा, मैंने सब में प्रवेश करके इनको अपने स्थान पे स्थित करके रखा है मर्यादा में मेरे कारण से। तो हर एक चीज में भगवान ने प्रवेश किया हुआ, लेकिन भगवान के ऊपर कोई भार नहीं है, भगवान के संकल्प मात्र से यह सब कुछ हो जाता है। भगवान ने गोवर्धन पहाड़ 7 दिनों के 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, कोई भगवान को भार नहीं लगा। सब ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया तू थक गया होगा, तेरा हाथ नीचे करो चंपी कर ले। अरे भगवान ने कहा नहीं, तुम लाठी अपनी लगा, हाथ बात लगा दो, मेरे हाथ का चिंता मत करो। नहीं नहीं तो एक हाथ उतारो दूसरे में रख दो, श्री दामा को दे रहो। भगवान मुस्कुरा रहे कि ठीक है तुम अपनी लाठी लगा लो। तो भगवान को कोई भार लगा 7 दिन गोवर्धन? आप तो 7 दिन, ये गिलास तो उठा के दिखाइए हाथ कैसे ऊपर करके बिठा के, 7 दिन तो बहुत है, 7 घंटे तो करके दिखाओ। खाली गिलास 7 घंटे आप हाथ के ऊपर नहीं रख सकते। और पर्वत को धारण कर लिया, तो भगवान की अचिंत्य शक्तियों से कुछ भी हो सकता, वो शक्तिमान इसलिए कहते हैं, कुछ भी संभव है। सबका पालन पोषण करते हैं लेकिन सब में नहीं है, और सबकी सृष्टि का कारण भी कहते हैं मैं। तब पूछा भगवान से, आप कैसे सृष्टि करते हो? तब कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि ये सब मुझ में कैसे हैं। तो उदाहरण क्या देते हैं ये पढ़ें 6वां श्लोक, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधार्य। उदाहरण क्या देते हैं कि ये जो पूरा आकाश है इसके अंदर हवा कभी भी कहीं भी जाए उसको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हवा की सीमा है आकाश, आकाश से बाहर नहीं जा सकती। आकाश की सीमा से बाहर नहीं जाती, इसके अंदर जहां जाए जा सकती। तो कहा जाएगा कि हवा कहां है, बोला आकाश में है। ऐसे सारे जीव मुझ में हैं, जैसे हवा आकाश में है, तो यहां आकाश भगवान का प्रतीक है और हवा जीवों का प्रतीक है। अब ये आकाश का ऐसे तो समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे कोई बड़ा पतेला उल्टा करके रखें तो उसके अंदर हवा है, कहीं भी घूम सकती है लेकिन पतेले से बाहर नहीं जा सकती। तो भगवान कह रहे हैं कि जीवों को इतनी स्वतंत्रता है कि इस भौतिक जगत के 14 लोकों में जहां चाहे वहां घूमे, क्योंकि ये सारा ही ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है, वो है मेरे अंदर, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते, ये सीमा है। तो भगवान ने आजादी दी है लेकिन सीमा के अंदर। जिस घर में घोड़ा बांधते थे पहले तो पांव में रस्सी होती थी, वो थोड़े टुकड़े में घूम सकता है, वहां आजाद है, खाए पिए घूमे, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता। ऐसे भौतिक जगत में, जैसे आप जेल में जाके देखते हैं, प्रभुपाद जी कभी उदाहरण देते हैं कि भाई सरकार है, जेल भी सरकार का ही विभाग है और विश्वविद्यालय भी सरकार का ही विभाग है, दोनों के ऊपर सरकार का कानून चलता है, लेकिन दोनों जगह में प्राइम मिनिस्टर तो दोनों जगह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कानून तो प्राइम मिनिस्टर का चलता है, मालिक तो वो है लेकिन वो सब जगह बैठे हुए तो नहीं है। तो ये भौतिक जगत जेल खाना है, ये भी है भगवान की सृष्टि में, लेकिन भगवान यहां है जरूरी नहीं है, वो आना चाहे तो आ सकते हैं लेकिन रहते नहीं है, लेकिन कानून तो भगवान का क्षण क्षण में यहां चलता है। तो वहां उदाहरण ये, जैसे सूर्य के उदाहरण में प्रकाश और सूर्य है, ऐसे गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री की गवर्नमेंट सर्वत्र है लेकिन प्रधानमंत्री सर्वत्र नहीं है। भाई सभी हम कहेंगे भारत में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं तो किसका शासन है, बोला ये प्रधानमंत्री हमारा इस वक्त में प्रधानमंत्री है, इसके शासन में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में प्रधानमंत्री रह रहे हैं, लेकिन हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो सब की व्यवस्था सरकार ने की हुई है यहां। तो भगवान की सरकार के द्वारा ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन भगवान सब जगह नहीं। तो सरकार जो होती है अव्यक्त होती है और प्राइम मिनिस्टर होता है वो व्यक्ति होता है। अब ये उदाहरण है, एक सीमा है, जैसे हमको भी सीमा में आजादी है, हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, लेकिन बाहर जाना है तो उसके नियम है, एक देश से और जगह जाना है तो उसके नियम है। ऐसे भगवान कहते हैं कि इस जगत के अंदर आप जहां भी आओ जाओ ये आपकी आजादी है आपके कर्मों से, लेकिन इसी के अंदर आपका ये आपकी सीमा है। तो सब कैसे स्थित है, हम सब भारत में स्थित है, किसके ऊपर आश्रित है, कोई कहा जाए तो सरकार के ऊपर आश्रित है, सरकार चाहे जब चाहे कानून नया लगा सकते हैं और हमको पालन करना पड़ता है, एक दिन कहा कि सब रुपये तुम्हारे घर में पड़े हैं कल काम नहीं आएंगे तो खत्म हो गए, अब हमारे घर में थोड़ी आके कहा प्राइम मिनिस्टर के तुम्हारे पैसे दो, उसके वचन एक से सारे 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 लोग ने ऐसे कर लिया। तो ये भगवान की संकल्प शक्ति से सब हो रहा है। उदाहरण है जैसे वायु इस बड़े आकाश में आजादी से घूम सकती है, ऐसे ये जीव किसी भी जोड़े में जाएं जा सकते हैं लेकिन इस आकाश की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। भौतिक जगत से बाहर जाने के लिए मेरा शरण लेना पड़ेगा तभी जा पाएंगे, नहीं तो ये प्रकृति के अंदर ही घूम सकते हैं, यहां से बाहर नहीं जा सकते। ये उदाहरण दिया तो ये सब आपके ऊपर टिके हुए हैं तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी। तब भगवान कहते हैं ये श्लोक और 8वें अध्याय में 2 श्लोक हैं, वैसे एक जैसे हैं। वहां उदाहरण क्या दिया था, ब्रह्मा सो जाते हैं सब सो जाते हैं और ब्रह्मा जब जागता है तो सब उठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जब सो जाते हैं रात को तो सब सो जाते हैं, ब्रह्मा उठते हैं तो नई सृष्टि होती है, जहां काम छोड़ा है वहां से करते हैं। तब ये नहीं बताया था ये सब जाते कहां हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि वो कहां जाते हैं और ये कार्य जो हो रहा है वो किसके अधीन है, किसके निर्देश में हो रहा है। तो ये श्लोक पढ़िए, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसर्जामि अहम्। हे कुंती पुत्र, ये सारे जीव शरीरधारी ब्रह्मा जी के दिन में मुझसे प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी की रात में मुझ में लीन होते हैं। तो ये कार्य कौन कर रहा है? ब्रह्मा नहीं कर रहा है, ब्रह्मा तो सो जाता है। लेकिन उसके बाद कहां जाता है ब्रह्मा और ये सारे? ये सब के सब गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में सब चले जाते हैं। इसलिए भगवान को कहते हैं विश्व। भगवान का पेट क्या है? विश्व का धाम है, पूरा विश्व उसमें समा जाता है। वहां तो केवल जानकारी थी समय की कि रात को सोते हैं दिन को उठते हैं, लेकिन यहां कह रहा है वो रात को सोते हैं तब वो मेरे अंदर आके आराम करते हैं और जब दिन होता है तो मैं उठा के उनकी सृष्टि मेरे निर्देश में होती है। तो ये भगवान, इसमें भगवान के ऊपर इशारा किया जा रहा है। वहां समय की बात थी, यहां भगवान का परिचय दिया जा रहा है कि सोते समय भगवान अपने पेट में हमको सुलाते हैं, अपने उदर में सुलाते हैं और ब्रह्मा जी के उठने के समय हमको जगा के फिर एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं। और ऐसे कब तक करते हैं? आठवां श्लोक, प्रकृतिम स्वाम अविष्ट भया विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सनम अवसम प्रकृतेरवशात्। ये प्रकृति स्वाम, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा अविष्ट भय, ये प्रकृति पूरी मेरे अंदर प्रवेश करती है। स्वम में प्रविष्ट, अविष्ट भयन प्रवेश करती है और फिर विसर्जामी, फिर इसको मैं दोबारा सर्जन करता हूं बार बार। वही बार बार इसलिए कि ब्रह्मा सोता है तो सो जाते हैं, दिन होता है तो फिर उठ जाते हैं। ये बार बार सोते हैं मेरे उदर में फिर उठ जाते हैं। भूत ग्रामम इमम कृष्णम, ये समूह, पूरा जीवों का समूह, देहधारियों का समूह, का समूह पूरे का पूरा, ये तो भगवान की महिमा है कि भगवान सबका आगार है, सभी वहीं जाके विश्राम करते हैं। तो बोला इसमें परिश्रम करना पड़ता है भगवान आपको? भाई कोई कहे किसी के पेट से बच्चा ही पैदा करना है तो कितनी पीड़ा होती है, तो भगवान इतना सारा काम आप करते हैं आपको पीड़ा तो नहीं होती है? बोला अवश्यम, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली। अवश्यम का मतलब किसी का बस नहीं चलता है। आप कहो कि हम अंदर नहीं आएंगे ऐसे नहीं कर सकते हो, और आप ये कहेंगे हम यहां से जाएंगे ऐसे नहीं कर सकते हो। आना टाइम पे पड़ेगा और जाना भी टाइम पे पड़ेगा और अपने आप होगा। बोला किसके अधीन होके? प्रकृति वशात, अपने स्वभाव के वश होके और प्रकृति के वश होके। तो फिर भगवान इतना सारा आपके सर के ऊपर भार उठा के आप चलते हैं? तब भगवान ने कह दिया, ये जीव जब पैदा होते हैं और जीव सो जाते हैं, इसकी सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है, फिर सृष्टि होती है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। नच माम तानी कर्माणी निबधनंती धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम ते शुकरम सो। नच माम तानी कर्माणी निबधनंती धनंजय। धनंजय वो तो बेचारे कर्मों के कारण सोते हैं, उठते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन मेरे ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं होता, इसलिए मैं बंधन में पड़ता ही नहीं हूं। क्यों भगवान? आप ही तो आपके पेट में जाते हैं, आपके पेट से निकलते हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बोला उदासीन वद आसीनम। उदासीन वद आसीनम किसको कहते हैं? शब्द का अर्थ है उद का मतलब ऊपर, आसीन का मतलब बैठा। उदासीन वद आसीनम, मैं उदासीन की तरह बैठा हुआ हूं। इसका भाव यह है कि मैं बैठा हूं ऊपर स्टेज पे। अभी बहुत बारिश आए, 3 फुट पानी अंदर आ जाए तो यह कुर्सी टेबल आप भीग जाओगे, लेकिन मैं तो ऊपर हूं, मैं तो नहीं भीगूंगा क्योंकि मैं ऊपर बैठा हूं, तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान कहते हैं ये सृष्टि का कार्य, जीवों का और सृष्टि का जो हो रहा है, ये अपने नियम और कर्म से हो रहा है, उनके कर्मों के कारण हो रहा है और प्रकृति के नियम से हो रहा है। लेकिन न तो मैं प्रकृति के नियम से बंधा हूं, न किसी के कर्म से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं केवल ऊपर से देख रहा हूं, मेरी नजरदारी में हो रहा है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है क्योंकि मैं ऊपर बैठा हुआ हूं। भाई दो बैल जोर से आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप छत के ऊपर बैठे हो तो आपको क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे उदासीन बैठा हूं का मतलब इनके कर्मों से या प्रकृति के नियम्स के बीच में मैं कुछ छेड़खानी नहीं करता हूं, ऊपर से देखता हूं, उसी के अंदर मेरी कोई आसक्ति नहीं है। दूसरा शब्द क्या लिखा? असक्त। आसक्त नहीं हूं, असक्त। असक्त शब्द का अर्थ है मुझे उसमें कोई आसक्ति नहीं है, ये तो अपने प्रक्रिया चल रही है, मुझे कोई आसक्ति नहीं है उसमें। तो इसका मतलब बंधन का कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति होगी तो बंधन हो जाएगा। तो मैं ऊपर बैठा हुआ हूं। अब ये 10वां श्लोक में ये सेक्शन पूरा हो रहा है, तो आइए। तो भगवान इतना सारा प्रकृति काम कर रही है तो प्रकृति स्वतंत्र है, आप उदासीन सोए हुए हैं क्या? तब भगवान कहते नहीं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में। अध्यक्ष किसको कहते हैं? हमारी भाषा में हम कहते हैं हमारी संस्था का अध्यक्ष है। अक्ष कहते हैं आंख को, और अधि का मतलब उसके नीचे, मेरी आंखों के नीचे ये सब काम होता है, मेरी नजरदारी में। जैसे ना कहते हैं भाई बच्चे मेरी नजरदारी में पल रहे हैं, ये घर मेरी नजरदारी में चल रहा है। और वैसे भी प्रकृति के ऊपर भगवान नजर ही डालते हैं, और नजर डालने से क्या होता है? सूयते। सूयते किसको कहते हैं? बच्चा पैदा करना कहते हैं सूयते। सूयते का मतलब जन्म देना। सूयते स चरा चरम, ये चर और अचर जगत, चर का मतलब चलने वाले, अचर का मतलब नहीं चलने वाले, ये सारे पैदा होते हैं प्रकृति से। ये भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं ब्रह्म महद अहम बीज प्रदापिता, ये प्रकृति के गर्भ में मैं बीज स्थापन करता हूं। तो भगवान आप प्रकृति को हाथ लगाते हैं? बोलो नहीं, केवल दृष्टि डालता हूं बस। तो यहां मयाध्यक्षण का मतलब मेरी दृष्टि से सृष्टि होती है। मुझे सृष्टि करने के प्रभुपाद जी को किसी ने लिखा कि इस दुनिया में तो बच्चे को पैदा करना है तो माँ बाप जाइए चाहिए तब उस बच्चे का जन्म होता है, तो क्या आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे आवश्यकता है क्या? भगवान ने कहा सृष्टि भगवान को करनी है, विष्णु को, लक्ष्मी चरणों में बैठी है, लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्मा जी पैदा हो गया कि नहीं हो गया? भाई ब्रह्मा जी तो लक्ष्मी ने जन्म नहीं दिया है। तो भगवान को पैदा करने के लिए यह आध्यात्मिक जगत में ऐसे ऐसे भोग वासनाएं नहीं है जैसे इस भौतिक जगत में है। वहां संकल्प मात्र से ही भगवान सृष्टि करते हैं, लेकिन कैसे? नजर डालने से कर देते हैं। केवल नजर डालते हैं प्रकृति के ऊपर, महत्तत्व के ऊपर भगवान की नजर डलते ही प्रकृति है दुर्गा देवी। और भगवान की नजर पड़ते ही भगवान विष्णु ही परिवर्तित होके शंकर जी बन जाते हैं सदाशिव, और वो इस सृष्टि का प्रकृति दुर्गा के द्वारा सारा चर अजर जगत का संचालन करते हैं। और फिर कहते हैं हेतु ना आने ना, और कोई हेतु नहीं है इसका, मेरी नजर के अलावा और कोई हेतु नहीं है। प्रकृति मेरी नजर में ये सारा काम करती है, अपने आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आपको दो तीन दिन पहले याद आए तो हमने कहा था कि प्रकृति भगवान के पीछे होती है, भगवान के वश में है और छाया की तरह है। मेरी छाया मेरे हाथ उठाने से हिलेगी, मेरे हाथ रख नीचे करूंगा तो बैठ जाएगी। तो प्रकृति भगवान के पूर्ण वश में है। और भगवान ने वहां तो गर्भ ददामी हमको, मतलब अपनी पत्नी के समान है, लेकिन कब इसमें गर्भ रखते हैं? जब गर्भ धारण कराते हैं इस प्रकृति में तो आप क्या स्वरूप धारण करते हैं? बोला सदाशिव। भगवान विष्णु परिवर्तित होके सदाशिव होते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति को भगवान विष्णु स्पर्श नहीं करते हैं, छूते नहीं है। ये प्रकृति के साथ संबंध भगवान सदाशिव का है, प्रकृति के साथ भगवान शिव का संबंध है। इसलिए भगवान शंकर जीव नहीं है, बाकी सारे देवता जीव है, हम भी जीव है। हम में से भी कोई योग्य इंद्र बन सकता है, कोई योग्य हो तो कोई और देवता का पद ले सकता है, लेकिन शंकर जी कोई नहीं बन सकता। वो नित्य निरंतर भगवान विष्णु का ही विकृत रूप है, जैसे दूध से दही बनता है। वो काय के लिए? बोला सृष्टि के लिए। सृष्टि कौन करता है? बोला दुर्गा, वो इस सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी है। वो भव, ये भव सागर है, उसका नाम शंकर का नाम भव है और उसकी पत्नी का नाम भवानी है। यही शंकर जी का लिंग और योनि का स्वरूप है जिसकी पूजा करते हैं। वो लिंग और योनि सृष्टि के लिए है, योनि प्रकृति और लिंग शंकर जी, ये दोनों मिलते हैं तब ये सृष्टि बनती है। ये पूरी सृष्टि का, सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप है। जगत विपरिवर्तते, जगत के अंदर जो भी प्रेरणा काम चल रहा है, जो भी खार है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसके पीछे प्रकृति क्रियामान है और प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मैं उदासीन हूं लेकिन प्रकृति के ऊपर मेरी नजर है, स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। यहां इतना स्वतंत्र है कि जैसे हवा आकाश में स्वतंत्र है, उतनी घूम सकती है लेकिन आकाश से बाहर नहीं जा सकती। एक सीमा निर्धारित है, उसके अंदर स्वतंत्रता है। तो प्रकृति की स्वतंत्रता अपनी भौतिक जगत की सीमा में है, इससे आगे नहीं। अब 11वें श्लोक से लेकर और 14वें श्लोक तक, वैसे आगे 15वें श्लोक तक भी जाएगा। अब ये बातें क्या कह दी अभी तक जो कथा हुई, इसका विषय क्या था? इस कथा का विषय है कि भगवान का इस जगत के साथ जो संबंध है वो अचिंत्य है। उसको कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं और कुछ लोग गलत समझ सकते हैं। अब तीन प्रकार, अभी जो कथा की यहां तक, भगवान में सब है, भगवान सब में नहीं है, भगवान सब जगह है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान सृष्टि करता है लेकिन प्रकृति करती है, भगवान केवल नजर डालता है, ये ऐसी बातें हैं जो कुछ लोगों को समझ में आ सकती है। और कह कौन रहा है? कह श्री कृष्ण रहा है। तो ये सब कृष्ण कहता है मैं करता हूं। तो कृष्ण ये सब कुछ करता है, वो कृष्ण जो वसुदेव के और देवकी के वहां जेल में पैदा हुआ वो करता है क्या? नंद यशोदा के वहां लाला हुआ, गैया चरा रहा था, वो ये सब करता है? ये बात समझना इतनी मुश्किल है, इसलिए तीन वर्ग यहां बता दिए कि एक तो उसको जानते हैं, एक नहीं जानते हैं और एक गलत जानते हैं। तो शब्द क्या हो गया? तीन, जानाति, न जानाति, अवज्ञा अवजानाति, जानाति न जानाति अवजानाति, जानते हैं नहीं जानते हैं और अवज्ञा करते हैं, गलत जानते हैं। तो दो श्लोकों में पहले भगवान कहते हैं अवज्ञा अवजानाति, अजानाति ना, अवजानाति कौन है? अवजानाति का मतलब अवज्ञा करने वाले। तो आइए ग्यारहवें श्लोकों को पढ़ते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्ति मम भूत महेश्वरम। दो शब्द तो इसके अंदर आ गए। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूर्ख मुझे, मूर्ख मेरी अवज्ञा करते हैं, मूर्ख मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे गलत जानते हैं। कब गलत जानते हैं? क्या कहते हैं? मानुषम तनुम आश्रितम, कहते हैं मानव के शरीर का मैंने आश्रय लिया है। इसका अर्थ क्या हुआ? गर्मी हो रही, मैंने पेड़ का, छाया का आश्रय लिया, तो पेड़ अलग हो गया, मैं अलग हो गया ना भाई, कहां किसका आश्रय लिया? बोला पेड़ का, पेड़ की छाया का आश्रय लिया है। किसका आश्रय लिया? इसके घर का आश्रय लिया है। तो क्या कहते हैं? भगवान ने मानव के शरीर का आश्रय लिया है, इसका मतलब भगवान का शरीर मानव जैसा है। इसका अर्थ है वो समझते हैं कि भगवान भी हमारे जैसा है। ये भगवान की अवज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे तो वो क्या नहीं जानते हैं? तो भगवान कहते हैं अजानन्ति, नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? परम भावम, मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। आपका परम भाव क्या है? मेरा परम भाव ये है कि आप जिसको मानुष शरीर कह रहे हो, ये सारे मानव मेरे शरीर की आकृति के बने हुए हैं, ये मेरा आदि रूप है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये मेरा आदि रूप है। क्या नहीं जानते हैं मेरे बारे में? महेश्वरम मम भूत मह, मैं इन सारे शरीरधारी प्राणियों का महाईश्वर हूं, ये नहीं जानते मैं महाईश्वर हूं। वो समझते मैं भी उन जैसा हूं। ये बहुत बड़ा भारी श्लोक है। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं, वेदांतिस्ट अपने आप को मानने वाले लोग हैं, जो ये टिप्पणी करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो मानव थे, उसके अंदर भगवान का आवेश रहा और उनका शरीर हमारे जैसा था और नाश हो गया। तो भगवान का शरीर किसका बना हुआ था? माया का बना हुआ था। तो ये किसकी, कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं भगवान? ये उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ मानते हैं, जिसको मायावादी कहते हैं। जबकि भगवान वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, भगवान की बाल लीलाएं किसी सामान्य बच्चे जैसी नहीं है, फिर भी उनको आम बच्चा जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़े नीतिज्ञ थे कृष्ण, बहुत अच्छा कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का उपदेश दिया, लेकिन ये बाल लीलाएं भगवान की, रास लीलाएं, ये भगवान की है नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आती है, ये हम नहीं मानते। वैसे गीता प्रेस बहुत बड़ा धार्मिक पुस्तकों को उपलब्ध कराने वाला, हमारे पास देश में पूरे विश्व में भी बड़ा कार्य कर रहा है। तो दो ही व्यक्ति बड़े इसमें काम करते थे, जयदयाल गोविंद का और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो जयदयाल गोविंद का ने कहा कि भाई कृष्ण के विषय में जो भी लिखो ये रासलीला मत लिखो, ये कृष्ण के विषय में भ्रांति डालने वाली है। तो भाई जी हनुमान प्रसाद ने एक पूरा छोटा पुस्तिका लिखी थी कि भगवान की रासलीला का रहस्य, और इसके बगैर तो भगवान की व्यक्तित्व का जो है वो अनुसंधान किया ही नहीं जा सकता। भगवान आनंदमय है तो भगवान का आनंद का रस कैसे प्रकट होगा? जब तक भगवान के साथ रस नहीं होगा, भाई हमको रस पीना अच्छा लगता है, कहते ये रसीला आदमी है, रसीला गान है, रसीला बोल है। तो रास शब्द का अर्थ है रस, तो भगवान की आनंद की अभिव्यक्ति इसके बगैर हो ही नहीं सकती। भगवान की सृष्टि लीला ऐश्वर्य लीला है और भगवान की रास लीला माधुर्य लीला है। प्रभुपाद जी ने तो तात्पर्य में श्लोक के लिखा है, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के, एक तो भगवान के अवतार कालीन रूप को और दूसरा भगवान के इस श्री विग्रह को, ये जो ठाकुर जी विराजमान किया है, इसको अगर समझते हैं कि ये लकड़ी का है या पत्थर का है, तो ये अवज्ञा करते हैं भगवान की, ये भगवान की अवज्ञा हो गई। ऐसे लोगों का एक तो बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों का मुंह देख ले तो स्नान करना चाहिए, एक श्लोक ऐसा भी लिखा है इसके तात्पर्य में। भगवान को नहीं जानना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलत जानना बहुत खराब बात है। प्रभुपाद जी भारत में प्रचार किया तो लेकिन हम तो सब जानते हैं भगवद गीता कृष्ण को, एक भी भक्त नहीं बना, क्योंकि अवज्ञा कर रहे हैं सारे। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रचार किया, वहां अवजानन जानते नहीं थे, अजानन थी जानते नहीं थे, तो उनको बताया और सब भक्त बन गए। तो गलत धारणाएं जो दिमाग है उसको धोना बहुत मुश्किल है। शास्त्र तो बहुत, एक मैं कहूं कि ये हमारा उदाहरण हमेशा रहता है, संसार में शास्त्र को पढ़ के समझने वाले मेरे ख्याल में लाखों में कोई एक होगा, और शास्त्र को समझ के पढ़ने वाले करोड़ों में कोई एक होगा। शास्त्र को पढ़ के समझना और शास्त्र को समझ के पढ़ना प्राय 99.99% कान से सुनी हुई बात के ऊपर विश्वास करते हैं। पढ़ने की तो हमारी ऐसी बीमारी है, नहीं पढ़ते। हम उदाहरण देते हैं सामान्य लोगों के समझाने के लिए। आपने घर में टेलीविजन लिया, आपने फोन लिया, आपने टीवी ली, उसके साथ इतना बड़ा किताब छपा हुआ आया, आपने कभी उसको खोल के पढ़ा? तो क्या कंपनी ने बेकार का खर्चा किया उसके ऊपर, और आपने पैसों का खरीदा फिर भी उसको क्यों नहीं पढ़ा? हमें पता है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं। ऐसे भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवत गीता दिया, वेद दिया, हम पढ़ते नहीं है। लेकिन वो किताब जो उस फ्रिज के साथ आता है, टीवी के, फोन के, उसको अलमारी में छुपा के रखते, ताले में रखते हैं। क्यों? बोला गारंटी है, खराब हो गई तो बदल लेंगे। ऐसे हमने ही घर में दबा के भगवत गीता को लाल कपड़े में बांध के रखा है, बाबा मरेगा तब हाथ लगा देंगे, पंडित जी को बुला के पढ़ा लेंगे। पढ़ो, अरे मरने के बाद उसके पढ़ा रहे हो, जीते जी क्यों नहीं पढ़ रहे? शास्त्र को पढ़ने वालों का अकाल पड़ा है दुनिया में। इसलिए भगवान को जानना बहुत आसान होते हुए भी दुर्लभ है। किसी को भी भगवान मानने को तैयार है, लेकिन असली भगवान को नहीं, उसको छोड़ के बाकी सबको मानेंगे भगवान है, लेकिन जो है उसको नहीं मानेंगे। ऐसी धारणा बना रखी हमने, बाकी एरा गेरा नथु खेरा सब भगवान है, बाकी असली कृष्ण ये भगवान नहीं हो सकता। कितनी मूर्खता है। तो भगवान ने इस श्लोक में कहा, ये जो मेरे को माया का स्वरूप मानने वाले हैं, ये मेरी अवज्ञा करते हैं। बोला इनका होगा क्या भगवान? तो इसके आगे वाले श्लोक को सुन लीजिए, फिर आपके लिए श्लोक है वो पढ़ते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसमाशुरिं चैव प्रकृतिं मोहितं श्रुताः। मोघ आशा, उनकी जो आशाएं हैं ऐसे लोगों की, किस चीज की आशाएं हैं? मैं ये कर्म कर रहा हूं इसका फल मिलेगा, निष्फल हो जाएगी। मोघ ज्ञान, वो समझता है कि मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, उसका ज्ञान निष्फल विफल हो जाएगा। विचेतसः, विचेतस शब्द का अर्थ है कोई चेतना नहीं रहेगी, पागल जैसा हो जाएगा। क्या करेगा? राक्षसिम, वो राक्षस हो जाएगा। आसुरिम, नास्तिक हो जाएगा। और ऐसे ही भावों का, ऐसी ही प्रकृति का, ऐसे ही शुभा का आश्रित लेगा, आश्रय ले लेगा। राक्षसी और नास्तिक शुभा का, भगवान है ही नहीं, क्या करना है भगवान को, कोई जरूरत नहीं है भगवान को, क्या मंदिर में जाने की जरूरत है, ऐसे प्रवचन करने लग जाएगा। अब आप दो श्लोक है, ये है जो भगवान को जानते हैं उनके लिए, ये अवज्ञा करने वाले, जो भगवान को जानते हैं ऐसे भक्तों का यहां वर्णन है। महात्मानस्तु माम पारथ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजत्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अब ये है ज्ञात्वा और वो है अवज्ञाता। ये ज्ञात्वा, ये जानते हैं, क्या जानते हैं? भूत आदि सब जगत का और जीवों का मैं आदि हूं, ये सब मुझसे निकले हैं, मैं इनका स्रोत हूं और मैं अविनाशी हूं, ये जानते हैं तो ये कौन है? बोला ये महात्मा है। अरे आत्मा तो इतनी छोटी है। बोला आत्मा छोटी है लेकिन मुझे महान आत्मा को जान लिया है, इसलिए ये महात्मा है। ये महात्मा है पार्थ, ये किसकी आश्रय लिया है? बोला उन्होंने किसका आश्रय लिया था? मोहितिम प्रकृतिम का, मोहिनी प्रकृति का, मोह में डालने वाली प्रकृति का आश्रय लिया था। और इन्होंने किसका आश्रय लिया है? देविम प्रकृतिम आश्रिता, इन्होंने मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लिया है। और देवी प्रकृति की परिभाषा क्या है? भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी का आश्रय लिया है। उन्होंने मेरी अंतरंग शक्ति माता का, राधा का आश्रय लिया है। आश्रय लिया है तो क्या करते हैं? भजते, मेरी सेवा करते हैं। भजन शब्द का अर्थ है सेवा, भजन का मतलब सेवा। भजते अनन्य मनसो, माम अनन्य मनसो, मन कहीं नहीं और जाए, ऐसे मन से मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, इधर उधर कहीं नहीं देखते हैं, मेरी सेवा करते हैं। तो ये है शुद्ध भक्ति वाले जो भगवान को ज्ञातवा जानते हैं, और वो थे अवज्ञाता। उनका सब कुछ नाश हो जाएगा, विफल हो जाएगा, कर्म भी ज्ञान भी योग भी सब नष्ट हो जाएगा। असुरी प्रकृति को, राक्षसी भाव को और नास्तिकता के मार्ग में उनको प्रकृति मोहित कर देगी, ये माया उनको दबोच देगी। लेकिन जो मेरे को भूतों का, जगत का, जीवों का आदि मानते हैं, मेरी दैवी प्रकृति राधा रानी का शरण लेते हैं, अंतरंग हलादिनी शक्ति का शरण लेते हैं, ऐसे महात्मा एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा में लगते हैं। बोला इनकी पहचान क्या है, कैसे पता लगे क्या करते हैं ये महात्मा? तब ये 14वां श्लोक है, पढ़िए। सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम नित्या नित्ययुक्त, हाँ सॉरी, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इनके गुण क्या हैं? बोला सततम कीर्तन यंतो माम, सदा निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं क्या भगवत गीता में लिखा है कि आप जप कहने का कह रहे हैं, जप करो, आप कह रहे हैं कीर्तन करो, भगवत गीता में लिखा है क्या? तो ये लिखा है सततम कीर्तन यंतो, सदा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और माम का अर्थ है, कृष्ण कहता है सदा मेरा कीर्तन करो। और जप का लिखा है? बोला हां, 10वें अध्याय में लिखा है, मैं जप यज्ञ हूं, जप करो, दोनों लिखा है। सततम कीर्तन यंतो माम, मेरा कीर्तन करो। और भागवत में तो कलयुग के दुख से मुक्त होने के लिए परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव महाराज से पूछा कि कली के प्रभाव से इन जीवों का उद्धार कैसे होगा, तब तो सुखदेव के मुख से बहुत स्पष्ट सरस्वती जीभा पे आई और ये निकला, कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। वहां तो कृष्ण कीर्तन सीधा कहा सुखदेव महाराज ने, कृष्ण कीर्तन, कीर्तन कृष्णस्य। और यहां लिखा है सततम कीर्तन यंतो कृष्ण, अगर मैं कहूंगा तो कहूंगा कृष्ण का, भगवान कहता है मेरा, लेकिन मैं कहूंगा तो कहना पड़ेगा निरंतर कृष्ण का कीर्तन करते हैं। कीर्तन करने का क्या अर्थ है? ये कथा कर रहे हैं, ये कीर्तन है, ये तो भक्तों की जानकारी के लिए सिर्फ यह सामान है। प्रभुपाद जी का अंत जो आखिरी दिन थे, शरीर ठीक नहीं था वृंदावन में, लेकिन उनकी चेतना आखिरी दिन तक भागवत का अनुवाद करते रहे, खाना पीना बंद कर दिया। उस वक्त उनके एक शिष्य जो प्रोफेसर साइंटिस्ट थे, पीएचडी स्वरूप दामोदर महाराज, उनको बुला के कहते थे कि आप ऐसे प्रचार करो, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, विज्ञानी लोगों को कृष्ण भावना के विषय में जाके प्रचार करो। और वो उनको सुनते थे, आके बैठते थे। तो एक दिन प्रभुपाद के सेवा करते हुए तमाल कृष्ण महाराज, क्योंकि प्रभुपाद की स्वस्थ ऐसा था कि हर समय चारों ओर कीर्तन होता रहता था, तो प्रभुपाद से तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, सो प्रभुपाद अब हम कीर्तन शुरू करें? इनका अर्थ ये था कि आप जो इनसे बात कर रहे हैं ये अब खत्म करें और अब कीर्तन शुरू करें। प्रभुपाद ने कहा, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, यही तो कीर्तन है, मैं जो इनको प्रचार के लिए उपदेश दे रहा हूं ये कीर्तन है। आप क्या कीर्तन सिर्फ खरताल बजा के, मृदंग बजा के उसको कीर्तन कहते हैं? नहीं, कीर्तन का आचार्य सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा कह रहा है, वो कीर्तन है। तो गीता का ये प्रवचन सुन रहे हो, ये कीर्तन हो रहा है, हम कीर्तन कर रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण कीर्तन दोनों हो रहे हैं, तो ये कीर्तन है, भगवान की कीर्ति गाना। तो भगवान का कीर्तन होता है नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, धाम का कीर्तन। भगवान के तो नाम का कीर्तन हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम कीर्तन है। और गुण का कीर्तन करेंगे तो कितना भगवान का गुण कैसे है, कहेंगे भक्त वत्सल भगवान, कैसा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, प्रेम के कारण अर्जुन के रथ को हांक रहे हैं, ये भगवान का भक्त वत्सलता का गुण का कीर्तन है। और ये भगवत गीता, अरे पार्थ सारथी अपने भक्त का उद्धार कर रहा है, ये भगवान की लीला का कीर्तन भी है कि उनके मुख से भगवत गीता का प्रवाह हुआ, ये भी कीर्तन है। भगवान का धाम का कीर्तन, भगवान का धाम कैसा है, भगवान की मधुर लीलाएं कैसी हैं, ये सब कीर्तन में आता है। तो कैसे पहचान है महात्मा की, जिसने भगवान का यतंतश्च दृढ़व्रताः, केवल कीर्तन नहीं करते यतन करते हैं, किस बात का, कि एक समय भी बेकार न जाए, क्षण भी व्यर्थ न जाए, इसलिए दृढ़ व्रत धारण कर लेते हैं। दृढ़ व्रत धारण करने का मतलब है, जैसे ब्रह्मचारी का व्रत किया था भीष्म पितामह ने, भीषण प्रतिज्ञा कर दिया आजीवन ब्रह्मचारी, ये व्रत हो गया। ये भक्तों ने व्रत धारण कर लिया है कि हम चार नियम का पालन निरंतर करेंगे, हम रोज 2 घंटे बैठ के भगवान के नाम का जप करेंगे, ये व्रत है। इसको बोलते हैं व्रत धारण करना। व्रत धारण करना मतलब अपने आप से वचन करना, भाई सवेर सुबह उठना है, ये मेरा व्रत बना, मैं व्रत बना लेता हूं, मैं उठ के रोज भगवत गीता 1 श्लोक पढ़ूंगा, ये व्रत बना लेते हैं। महात्माओं को क्या जरूरत है व्रत की? बोला महात्माओं को विश्व के उदाहरण के लिए व्रत धारण करना पड़ता है, स्वयं को जरूरत नहीं है। 24 घंटे सोए हुए हों तो भी उनकी समाधि लगी होती है, लेकिन फिर भी नाना शास्त्र विचार अनेको, सारे शास्त्रों को विचार करके नाम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम गानन, 24 घंटा भगवान के चिंतन में रहते हुए भी गिन के नाम का जप करते, के इतना रोज जप करना है। क्यों नहीं, तो हमारा दिमाग इतना बेईमान है, एक दिन जब काम पड़ेगा तो 8 घंटे बैठे राम राम करेंगे, काम निकल गया तो भगवान को राम राम कर देंगे। इसलिए कुछ वचनों में अपने आप को बांधना चाहिए, आधा घंटा मैं इस आसन से उठूंगा नहीं, घर में ऐसे बना लो नेम, आधा घंटा मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो जाए आधे घंटे के बाद काम करूंगा, तब तक मैं भगवान के सुमरण में, ऐसे कुछ वचन छोटे लेने चाहिए समय के और सीमा के। 20 मिनट के लिए कहो, 5 मिनट के लिए तो करके दिखाओ। इस जगह से मैं 15 मिनट उठूंगा नहीं, 15 मिनट इस जगह से और 15 मिनट मैं भगवान का नाम लूंगा, तब तक कोई और काम नहीं करूंगा। ऐसे सीमा में अपने आप को बांधने को कहते हैं व्रत धारण करना। तो ये व्रत धारण करना चाहिए, जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए। तो ऐसे वो दृढ़ व्रत धारण करते हैं, नमस्यन्तश्च, और मुझे नमस्कार करते हैं। नमस्कार की परिभाषा क्या है? एक नमस्कार होता है हाथ जोड़ना, इसका अर्थ होता है कि आप आज्ञा करो हम क्या करें। दूसरा नमस्कार होता है सर नीचे झुकाना, हम अपने तरफ से नहीं सोचेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तीसरा नमस्कार होता है दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह शरीर भी हमारा, आप उठाएंगे तो उठेंगे, कहेंगे तो करेंगे, खिलाएंगे तो खाएंगे। ये नमस्कार का अर्थ है न मे अस्ति नमस्ते, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान सब कुछ आपका है, जैसे आप कराओगे वैसे मैं करूंगा, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगा। ये अर्जुन ने पूछा कि अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, करिष्यत वचनम, ये हो गया नमस्कार की सही परिभाषा, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। ये गीता के अंतिम जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो अर्जुन ने कहा जो आप कहोगे श्री कृष्ण वो मैं करूंगा, करिष्यत वचनम, ये हो गया नमस्कार की परिभाषा, मेरा कुछ नहीं है, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। हम तो ऐसे नाम का नमस्कार करते हैं, करते हैं अपने काम, मन की बात करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक, भक्ति, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम से, नमस्कार भी करते हैं बहुत स्नेह और प्रेम से, सेवा के भाव से क्या करते हैं, उपासते, उपासते कहते हैं, उप का मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठने, मेरे नजदीक आके बैठते हैं। जब पुजारी है तो पूजा करेगा, पास में जाएगा तब पूजा करेगा ना, तो मेरे निकट आके बैठते हैं। भाई क्या करेंगे निकट बैठ के, युक्ता, मेरी सेवा में लगे होते हैं, नित्य मेरी सेवा में, मेरे पास, मेरी सेवा में हर समय कीर्तन करते हैं, यतन करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, नमस्कार करते हैं, ये मेरे शुद्ध भक्त मुझे जानते हैं। ये इनको क्या मिलेगा, इनको मैं मिल जाऊंगा, और उनको क्या मिलेगा, असुरी राक्षसी योनि मिलेगी, और इनको कौन मिलेगा, मैं मिलूंगा, क्योंकि मेरा कीर्तन करेंगे तो मेरे पास आएंगे। अब 15वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आगे के अध्याय आधारित है, पाठ अभी पढ़ लेते हैं लेकिन कथा शाम को करेंगे। 15वें श्लोक में अब एक हो गया भगवान की अवज्ञा करने वाले, वो तो हो गए मायावादी, एक हो गए भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त महात्मा, निरंतर कीर्तन करने वाले, सततम कीर्तनियन को का अर्थ हो जाएगा कीर्तनीय सदा हरि, सदा का मतलब सत्यन और कीर्तन है सदा हरि, महाप्रभु की भाषा होगी। अब इन दोनों के बीच में कुछ ज्ञानी तीन प्रकार के और होते हैं, तो इस श्लोक का पाठ करते हैं फिर कथा को विराम देते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञ से कुछ अन्य भी हैं मेरी उपासना करने वाले, ये भक्ति से हो गए, अब कुछ ज्ञान यज्ञ से मेरी और भी उपासना करते हैं, यजन तो माम उपासते, मेरा यजन करते हैं, यहां देखो भक्तियां नहीं है, यहां भक्तियां भी नहीं है, भजनते भी नहीं है, यजनते है। देखो यजनते और भजनते में बड़ा अंतर है। यजन करना मतलब पूजा करना, भजन करना मने सेवा करना। तो यजनते माम उपासते कौन कौन है, तो तीन के नाम सुन लीजिए। एक त्वेना, अपने आप को ही ब्रह्म मानते हैं, एकत्व में मैं ब्रह्म हूं, ये वो नहीं है, 11-12 वाले मायावादी नहीं है, ये ब्रह्मवादी है। अपने आप को ब्रह्म मानते हैं लेकिन भगवान की अवज्ञा नहीं करते। मैं ब्रह्म हूं एकत्वेना, अपने आप को भगवान से एकत्व करके मानते हैं। बोला दूसरे कौन है, पृथक्त्वेना बहुधा, पृथक माने अलग, बहुधा माने बहुत अलग, बहुत देवताओं को भगवान का प्रतिनिधि या भगवान की प्रतिमा समझ के पूजते हैं, माने बहु देवता के पूजा करने वाले। बोला तीसरे कौन है, विश्व तो मुखम, भगवान के विश्व रूप की उपासना करने वाले। तो तीन प्रकार के और भी जो खराब नहीं है, खराब का मतलब है मेरी अवज्ञा नहीं करते लेकिन मेरे को जानते भी नहीं है ठीक, और नहीं जानते हैं इसके लिए भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं। एक भाव से कैसे करते हैं, पूरे जगत को देखते हैं, वाह वाह ये पूरा जगत भगवान का स्वरूप है, तो ये हो गई भगवान के जगत की पूजा, विश्व रूप की पूजा। फिर कहते हैं नहीं नहीं बरसात का देवता अलग है, वो वायु का देवता अलग है, तो बरसात के देवता की अलग पूजा, वायु के देवता की अलग पूजा हो गई। तो ऐसे बहुत से देवताओं की पूजा शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं ये सारे देवता तो एक भगवान के अधीन है, तो सर्वत्र जगत में एक भगवान ही है, तो फिर मैं ही भगवान, उसी को अपने आप को उसी से जोड़ लेता हूं, एकत्व है ना, ऐसा भाव कर लेते हैं। तो इन तीनों में प्रभुपाद जी का तात्पर्य कहते हैं, इनमें कम से कम विश्व तो मुखम वाले विश्व रूप की उपासना कर रहे हैं तो भगवान के रूप को तो मानते हैं, इसलिए इन तीनों में वो ठीक है। देवताओं की पूजा करने वाले उसका आगे नवे अध्याय में वर्णन आएगा, पृथक्त्वेन वाले कौन है और विश्व तो मुखम वाले के 2-3 श्लोक है, फिर 11वां अध्याय पूरा है, और एकत्वेन वाले के ऊपर अर्जुन 12वें अध्याय में प्रश्न पूछेगा कि ब्रह्म की उपासना करने वाले और आपकी उपासना करने वाले में क्या अंतर है, तो वो 12वें अध्याय तक जाएगा। तो यहां वाणी को विराम देते हैं। आज हमने क्या सुना, आज हमने भगवद गीता के 9वें अध्याय में सुना कि भगवान का इस जगत के साथ अचिंत्य संबंध कैसा है। भगवान सबका पालन पोषण करने वाले हैं, सभी भगवान की गोद में बैठे हुए हैं, फिर भी भगवान अपने धाम में है। ऐसे सर्वत्र भगवान को देखने वाले कुछ समझते हैं उसको, कुछ अवज्ञा करते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो नहीं समझ, जो अवज्ञा करते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं, जो समझते हैं वो भक्त हो जाते हैं, और जो कुछ कुछ समझते हैं वो फिर अलग प्रकार से पूजा करते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको करना चाहिए शुद्ध भक्ति। ये आगे इस अध्याय के पूर्ण आहुति तक कर पहुंचते पहुंचते समझ जाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, बुलाओ।